नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है। यह लाइव प्रोग्राम है जिसका नाम है बी द चेंज। इस सीरीज में पिछले लगभग एक महीने से मैं आपका साथी और आपका हम सफर बनकर आया हूं और मेरा नाम है आरजे श्रीनिधि। पिछले इस एक महीने से भी अधिक के सफर में हमने आपके साथ बातचीत करने की जो कोशिश की है उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक छोटी सी कोशिश ये थी कि लॉकडाउन के समय पर ये जो बदलता हुआ वक्त आया है इसमें हमें जो बदलाव में तकलीफें हो रही हैं या कई कुछ दोस्तों को मदद की जरूरत है तो वो मदद हम ऑफर करें, ये ब्रह्मा कुमारी इसकी आउटरीच थी। और इसमें आप सबने गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया, अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोले और अपने घरों से आप सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। और इसी कोशिश में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी भाई बहन अकम्पलिश्ड योगीज आपके साथ बैठे, आप उनके साथ बातचीत कर सकें, उनके अनुभवों का लाभ ले सकें। तो आइए आज ऐसे ही एक अकम्पलिश्ड योगी के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के बी द चेंज सीरीज में हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी हैं। ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के महादेव नगर सेंटर्स के निदेशिका हैं। ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की यूथ विंग की वो चेयरपर्सन है। साथ साथ अनेकों दशकों से वो ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को आगे बढ़ाने में अग्रसर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेकों कार्यक्रमों में दीदी जी शिरकत करती हैं। लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना से उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश भी दीदी जी ने की है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी जी हमारे साथ हैं। चंद्रिका दीदी जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
ओम शांति, ओम शांति।
दीदी जी, पहले तो ये बदलाव का वक्त आया है, ये अचानक आया, हम में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अपने हिसाब से जैसे जैसे वो इस चेंज को अडेप्ट कर सकते थे वैसे उन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश की, मगर हम में से कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अगर हमें मुश्किल भी हुई है तो हमने मदद मांगने के बारे में सोचा, और जब मदद मांगी जाती है तो मदद मिलती भी है। और बहुत सारे लोगों ने खुद की मदद करने की सोची, दूसरों की मदद करने की सोची, और जहां जहां पर थोड़ा बहुत हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते थे, सपोर्ट बन सकते थे, वहां हमने वो बनने की कोशिश की है। ब्रह्मा कुमारी की भी ये कोशिश रही है कि जहां तक हम हो सके लोगों को हम स्पिरिचुअल विजडम ऑफर कर सकें, गाइडेंस दे सकें, जहां पर इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो हम वो दे सकें। आप इस बदलते हुए दौर को कैसे देखते हैं, इसके प्रति आपका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो समय बदला है अचानक हमारे सामने?
ओम शांति। भाई जी, सबसे पहले तो आपने हमें ये जो मौका दिया है, हमारे भाई बहनों से मिलने का, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। समय में बदलाव आना ये वास्तविकता है। हम जानते हैं कि समय कहाँ से बदल अब कहाँ आ गया। हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आया, और ये तो अभी कलयुग की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। इसलिए ये हर विकृति की अति है, और जब विकृति की अति होती है तो उसका जो परिणाम होता है वो दुखदायक ही होता है। अब ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। समझदार व्यक्ति समय के पहले स्वयं को तैयार रखता है, बारिश आने के पहले छाता खरीदता है, और ठंडी आने के पहले गर्म कपड़ों का प्रबंध करता है। तो ये जो बदलाव आया है ये अवश्य है कि एक प्रकार से एक अकल्पनीय है। ये किसी के दिल दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सारी दुनिया एक ही जैसी परिस्थिति में आ जाए और सब कुछ बंद हो जाए, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन परिस्थिति ने हमें ये पाठ पढ़ा दिया। अब ऐसे मौके पर हमें ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो गए तो अंदर का रास्ता खुलने का गेट खुल चुका है कि हम अपने अंतरात्मा के अंदर में जाके देखें कि ये समय मुझे क्या संदेश दे रहा है और इस समय में मुझे अपने आप को किस प्रकार से तैयार करने का है। वैसे तो हमारी जीवन आध्यात्मिक है लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन के समय में मैंने अपने आप से बहुत फायदा लिया। कभी 11 दिन एकांत में चली गई, कभी 7 दिन एकांत में चली गई, कभी 3 दिन एकांत में चली गई और एक चालू रूटीन से अलग सा रूटीन बना करके अपने आप को एजुकेट करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मैंने लिया। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को देखने का और अपने भावी जीवन के लिए भी अपनी नजरिया को तैयार करने का। तो मुझे तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। लेस मात्र ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये क्या आया, क्यों? घड़ी का चलना स्वाभाविक है। आप घड़ी को ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हो कि अभी 1 क्यों बजा, अभी 2 क्यों बजा, अब क्यों चल रहे हो, बंद हो जाओ। ये तो समय की घड़ी है, इसको चलना ही है और आगे तो इनसे अधिक और नाजुक परिस्थितियों का आना संभवित है। हमें उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार करना है।
जी, आप ये जो बात कह रहे थे कि हम समझदार व्यक्ति वो हैं जो बारिश से पहले छाता खरीद ले, अब हम में से बहुत सारे लोगों को ये तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला कि ऐसा भी कुछ आएगा, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। मगर आपका इशारा हम समझ सकते हैं कि हमें पहले से अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा के रखने की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर तो बने, उसके लिए पहले आत्मा के अंदर शक्ति बिखरने की आवश्यकता है। मैं हमारे उन दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं दीदी से, कोई सवाल है आपके मन में, कोई बात है, कोई परेशानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर बस अगर आप एक शाउट आउट ही देना चाहते हैं, आप अगर आप कुछ सिर्फ कहना चाहते हैं अपने दिल के ख्याल, तो भी आप कह सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अगर आप फेसबुक पर यूज कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट्स में अपने विचार रख सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ चंद्रिका दीदी जी हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में। हमारा पहला प्रश्न मंगेश धोरे पूछते हैं और मंगेश प्रश्न पूछते हैं, मैं किसी एक सोच में डूबा रहता हूं और उसकी वजह से दूसरा काम नहीं कर पाता हूं, ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे निकलूं कि दूसरे काम में भी मन लगा सकूं, ये इनका प्रश्न है दीदी।
मंगेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब इसका एक बहुत सरल उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने मन को और तन को एक डेली रूटीन के अंदर एस्टैब्लिश करो। अपने को क्या करना है उसका पूरा प्लानिंग करो और वो प्लानिंग किया हुआ होगा ने तो उसको फॉलो करने में आपका मन आपको सहयोग करेगा। देखो, मन को काम चाहिए और मन को चलना ही अच्छा लगता है, तो आप किसी एक काम के अंदर बुद्धि रखो ऐसा नहीं रखो। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समय प्रमाण अपने मन को सारी दिनचर्या में सेट करो कि मुझे उठना कब है, बैठना कब है, पढ़ना कब है, लिखना कब है, मित्रों से बात कब करना है। ये सारी चीज को अगर प्रोग्राम कर लेंगे ना और उस प्रमाण चलने का एक तरीका बना लो तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो भी बड़े लोग हुए हैं उनके जीवन में आप देखते होंगे कि उनके जीवन की हर सेकंड का हिसाब होता है और वो पहले से अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। तो हमें भी अपने लाइफ में बड़ा बनना है, बड़े काम करना है। हम लोगों के काम भी आए, हम दुनिया के काम भी आए, तो इसलिए एक विचार में लगे रहने से फायदा नहीं है। आप थोड़ा जंप लगाओ और अपने मन को ऊपर उठने का तरीका सिखाओ।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि हम सिर्फ एक ही चीज में लगे रहेंगे तो बाकी चीजें अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए ये सोचना पड़ता है कि हमें बहुत भी चीजें करनी है, तो अपना मन वहां लगाने की कोशिश करनी है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। राधिका कामत हमारे साथ प्रश्न लेकर आए हैं। वो कहते हैं, When I sit for meditation, all of my family members, one after the other, comes and disturb me. They want their work to be done. So I get irritated and could not meditate. What should I do? मैं समझता हूँ ये सिर्फ राधिका जी का प्रश्न नहीं है दीदी, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिमिलर प्रश्न पूछते हैं। राधिका जी कहते हैं कि जब भी वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, कोई घर का सदस्य आता है, उनसे कोई और काम कराने के लिए उनकी डिमांड करता है, तो मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। बबीता जी का सिमिलर प्रश्न है। बबीता अग्रवाल पूछते हैं, मुझे कोई कुछ बोलने से इरिटेशन होता है, कोई भी उन्हें कुछ भी बोलता है तो उस बात से उनको इरिटेशन होती है, तो वो क्या करें, ऐसा पूछते हैं। ये बबीता जी का प्रश्न भी मिलता चलता है।
राधिका बहन जी और बबीता बहन जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं, तब आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं। इसका कारण ये है कि मन को मेडिटेशन में प्रोग्रामिंग देना पड़ता है कि इस समय जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूं तो मुझे मेडिटेशन में क्या करना है। अब एक भक्ति का तरीका ये है कि लोग मंत्र जाप करते हैं या माला फेरते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो मेडिटेशन है वो अंडरस्टैंडिंग है। बुद्धि को किस तरह से अपने आत्मस्वरूप में लगाया जाए और परमात्मा के साथ कनेक्ट किया जाए, तो जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के परमात्मा के साथ बातचीत में लग जाएंगे, अगर समझो आप किसी के साथ बातचीत करने में बिजी हो और आप ऐसे बिजी हो कि कोई कितना भी आया है, साइड में खड़ा है, आपका ध्यान नहीं है, तो क्या होगा, आप अपनी बातों में एकाग्र रहेंगे और वो जो आए हैं वो देखेंगे कि ये तो बिजी हैं, तो वो चले जाएंगे। तो मेडिटेशन जो इस इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है, 7 दिन का कोर्स होता है और उसमें परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट होना होता है, परमात्मा के साथ सर्व संबंध कैसे जोड़ने हैं, या अपनी आत्मा की जो पूर्ण अवस्था है उसके साथ हमें कैसे अपने आप को लिंक रखना है, तो ये थोड़ा अभ्यास सीख जाएंगे तो फिर वो बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस दिशा में थोड़ा आप अभ्यास करेंगे। बाकी बिगिनिंग की स्टेज में मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन में 4 प्रोसेस होते हैं। आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आपके ऊपर बाहर के विचारों का, जो कारोबार में आप लगे हुए हैं, बुद्धि लगी हुई है, वो विचार आएगा, वो आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपनी सेफ्टी तो करेंगे नहीं, तो आप लड़ाई करो अच्छे विचारों से अपने मन को एकाग्र करने के लिए। फिर लड़ाई करते करते क्या होगा, पढ़ाई हो जाएगी। जितनी एकाग्रता आपकी बनी वो आपकी पढ़ाई हो गई। और इंसान पढ़ता किस लिए, कमाई करने लिए, इनकम करने के लिए। तो मेडिटेशन के द्वारा आपको इतनी शक्तियों की प्राप्ति होगी और फिर आपकी मन बुद्धि आपके इतने ओबीडियंट सर्वेंट होकर के रहेंगे, आपका मन कहां भागेगा ही नहीं, आपका मन वहां ही रहेगा आप जहां रखने चाहते हैं। तो ये आत्मा के ज्ञान को समझना जरूरी है। और कि आप किसी भी ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र में 7 दिन का कोर्स और मेडिटेशन अवश्य सीखने की कोशिश कीजिए।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि शुरुआत में मेडिटेशन जब आप करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बट आप सही तरीके से जब उसको सीखते हैं और धीरे धीरे करने का अभ्यास करते हैं तो फिर तो बाहर के डिस्टर्बेंस को भी आप ओवरकम करना सीख जाते हैं, वो डिस्टर्बेंस आपको प्रभावित नहीं करते। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। हमारे दोस्त जो प्रश्न पूछते हैं उनमें से मैं सभी प्रश्नों को एक दिन में नहीं ले पाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 2-3 दिन के 2-3 सवालों को अगर वो सिमिलर है तो मैं उनको एक साथ पूछने की कोशिश करूँ। संजना हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं और संजना का प्रश्न है, ओम शांति दीदी, मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि आज नहीं कल से शुरू करूंगी, इसके कारण ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये इनका प्रश्न है कि वो क्या करें ऐसी परिस्थिति में कि वो सही सही डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, कल के लिए पोस्टपोन करने लगती हैं। मैं सोचता हूँ संजना जी से ही मिलता जुलता सवाल कुछ दोस्तों का भी होगा जो इस लॉकडाउन में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश तो कर रहे थे, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन या योगा करने की भी कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, बट अगले दिन के लिए टाल देते हैं कि चलो मैं कल करूंगा, कल करेंगे, ऐसे इसके कारण वो ग्रो नहीं हो पाते। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
अच्छा, संजना बहन जी और जो भी भाई बहने हैं, और वैसे तो ये बहुतों के जीवन में ये बातें आती हैं। अब मैं आपको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाती हूँ, आप सब बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई भी कार्य करना होता है तो पहले संकल्प बनता है। अब ये संकल्प के 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है चिंतन का, दूसरा ऑप्शन है चिंता का। अब चिंतन का जो प्रश्न, चिंतन की जो साइड है, चिंतन का जो तरीका है वो ये है कि मैं जो संकल्प कर रही हूं वो मेरे से सफल होगा ही, मैं बहुत कुछ जीवन में करके आई हूं, ये कार्य मेरे से संपन्न हुआ ही पड़ा है, मुझे करना है और मैं ऐसे 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 इस विधि करूंगी। तो चिंतन हमेशा पॉजिटिव रहता है और दृढ़ता संपन्न रहता है, और चिंतन के स्टेप पर चलने से सफलता मिलती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन संकल्प को मिलता है, करना तो है, चाहते तो हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, देखेंगे, कोशिश तो करेंगे, ये चिंता का तरीका है। और मैं आपको गारंटी से कहती हूं कि ये चिंता के तरीके वाले संकल्प में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? ये चिंता, भय, शंका ये पॉइजन है। और पॉइजन क्या करता है? आपने इतना बड़ा दूध का पतीला भरा है, उसमें 2 ड्रॉप पॉइजन का डालो, सारा पॉइजन हो गया। आपने अपने मन में बहुत ऊंचे संकल्प किए, बहुत उम्मीदें बनाई, बहुत आशाएं बनाई, बहुत ऊंचा सोचा, और उस सोचने के बाद ये जो चिंता का रास्ता अपनाया कि क्या होगा, कैसे होगा, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ये सफलता नहीं हो सकती। हमारे संकल्प करने के बाद 3 दुश्मन है, उससे सावधान रहना है। पहला दुश्मन है आलस्य, दूसरा है अलबेलापन, और तीसरा है एक्सक्यूजेस। आलस्य शरीर का है, थक गए हैं, सोना है, आज नहीं करेंगे, ये आलस्य है। अलबेलापन है मन का, ठीक है कर लेंगे, अभी 1-2 दिन के बाद करेंगे, जरूरी थोड़ी आज ही करेंगे। ये मन का अलबेलापन है और एक्सक्यूजेस। अब मुझे किसी का साथ भी मिले, कोई की कंपनी मिले, सर्कमस्टेंस भी ठीक मिलने चाहिए तो कर सकेंगे, बहानेबाजी एक्सक्यूजेस। ये तीन चीजों को दिमाग से एकदम निकाल दो और चिंतन की दिशा को अपने लाइफ की दिशा बना लो और कल करने वाली बात आज करूंगी, आज करना है वो अब घड़ी करूंगी। कभी कल और काल का भरोसा नहीं होता है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की तो मैं आपको गारंटी के साथ कहते हूं कि आप जो सोचेंगे उसमें अवश्य सफल होंगे। बट टेक केयर के चिंतन का ऑप्शन लेना है, चिंता का ऑप्शन नहीं। ऐसे करेंगे योजना जरूर बनानी है, ये नहीं सोचना है कैसे करें क्या होगा, ये नहीं। आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
दीदी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सफलता के लिए हम कोशिश तो करते हैं बट उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूरी होता है और पॉजिटिव थिंकिंग करना जरूरी है। नहीं होगा करते रहेंगे तो शायद वो चीज नहीं हो। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, आकांक्षा सिंह हमारे साथ हैं, ये भी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, मैं एक पर्सन से बात करना चाहती हूँ बट चाहती हूँ कि वो स्टार्ट करे बातचीत करना, क्या करूं कि वो मेरे से बात करना शुरू करे। ऐसा बहुत हुआ है कि ये लॉकडाउन में बहुत सारों के रिश्तों में थोड़े फेरबदल आए हैं, बहुत सारे रिश्ते थोड़े स्ट्रेन से गुजरे हैं, ऐसे में कुछ लोगों की बातचीत रुक गई है तो वो चाहते हैं कि सामने वाला बातचीत करना शुरू करे, तो मैं क्या करूं कि वो सामने वाला बातचीत शुरू करे, ये सवाल पूछते हैं।
हमारी मीठी आकांक्षा बहन, आपने तो जबरदस्त बात सुना दी। अब मैं आपको एक सीक्रेट सुनाऊं। ये सोच की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब तक आप ऐसा सोचेंगे ने कि वो मेरे से बात करे तो मैं करूं, तो वो उनको वही सोच आएगा कि वो मेरे से बात करे तो मैं करूं। इसीलिए क्योंकि ये जो थॉट्स के वाइब्रेशन है बहुत एक्यूरेट कंसर्न व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, एज इट इज पहुंचते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा सोचेंगे तब तो कभी आप दोनों का मेल संभव नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि अरे मैं बात करूं, मैं झुकूं, मैं हम्बल बनूं, क्योंकि मेरे को बात करना है और कितनी अच्छी व्यक्ति है, मुझे उनके लिए कितना प्यार है। आप उनके प्रति संकोच नहीं रखो, आप उनके प्रति दिल में प्यार क्रिएट करो कि ये कितनी अच्छी व्यक्ति है और मुझे उनके लिए कितना दिल में प्यार है और मैं उनसे जरूर बात करूंगी और मैं ही पहले बात करूंगी। आप शुरुआत करेंगे आपका पुण्य बन जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि वो बात करे, ये सोचो मैं बात करूं।
बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हैं दीदी कि हम हमेशा कभी कभार दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें लगता है कि नहीं वो शुरुआत करें, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम शुरुआत करें, हम वो पॉजिटिव इनिशिएटिव लें ताकि वो रिश्ता सुधरे, उस रिलेशनशिप को हम बेहतर बना सके। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फेसबुक से हमारे पास साची परीख पूछती हैं। साची जी का प्रश्न है, ओम शांति, समटाइम्स वी बी नाइस टू पीपल बट स्टिल पीपल कॉन्स्टेंटली बी रूड एंड डाउटफुल, प्लीज सजेस्ट। साची जी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि बहुत बार हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनके प्रति सद्भावना रखते हैं मगर वो लोग हमारे प्रति हमेशा रूड बिहेवियर करते हैं, हमारे ऊपर शक की निगाह से देखते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा साची जी का प्रश्न है।
साची बहन, आपकी आपके अनुभव की बात है इसलिए जरूर वो सही बात है। लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपना अपना एटीट्यूड होता है। अभी सामने वालों के विचारों को, एटीट्यूड को बदलना वो एक मेहनत की बात है, परंतु हमारे लिए ये एक ही तरीका है कि हमने जो रास्ता अपनाया है शुभ भावना का, उनके साथ अच्छे व्यवहार का, तो वो बनाए रखो। उसके अंदर ऐसा नहीं कि दो चार बार अच्छा व्यवहार किया फिर हम हिम्मत हार जाए, नहीं, कुछ भी हो हमें अपना नेचर बनाए रखना है, क्योंकि वो हमारी प्रकृति है। उनकी परिस्थितियों को हम नहीं जानते हैं कि उनका नेचर इस प्रकार का क्यों बना हुआ है, उनका ऐसा सराउंडिंग्स हो सकता है, या व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ अनुभव हुए होते हैं, लोगों से धोखा मिला हुआ होता है, तो एक शक और शंका का नेचर बन गया होता है। तो हम दूसरों के नेचर को बदलने के लिए तो अपनी शुभ भावना के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें उनसे हमारा नाता बना के रखना ही पड़े, ये परिस्थिति है, तो हमें अपनी शुभ भावना बनाए रखना चाहिए। कम से कम वो हमारे से ऐसा गलत व्यवहार नहीं करेंगे जो अन्याय में परिवर्तित हो। तो अपना विचार जो है, अपना शुभ भावना है, वो बनाए रखना चाहिए और उनके प्रति अपनी शुभ भावनाएं रखते चलो। कभी मौका मिले तो शांति से बैठ के बातचीत कर सकते हैं कि आपको हमारे प्रति कुछ कहने का है, आपको हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन है, हम पॉजिटिवली पूछ सकते हैं।
बहुत अच्छी बात।
एक मिनट, कभी अपने को मालूम नहीं होता है, अपन समझते हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन उनके माइंड में हमारी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण वो हमारे से डिस्टेंस रखे। कुछ सुनाई सुनाई बातों के कारण भी हो सकता है कि उनको हमारे लिए कुछ मन में ऐसा बायस हो जिसके कारण वो हमारे से डिस्टेंस रखते हो, तो हमें थोड़ा समीप आके खुल करके बात करके अपने संबंध को वेरीफाई करना चाहिए।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी। हमारे कुछ दोस्त फीडबैक भी लिख रहे हैं। इंद्रजीत देशमुख हैं, ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं वंडरफुल गाइडेंस दीदी, इट इज नाउ क्लियर, चिंता से सक्सेस नहीं मिलता है, चिंतन से मिलता है, चिंता इज पॉइजन, थैंक यू सो मच, ऐसा कहते हैं। थैंक यू सो मच इंद्रजीत इस कमेंट के लिए। राखी हांडा का प्रश्न है, राखी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं दीदी, वो पूछते हैं जेलसी को कैसे फिनिश करें, ये प्रश्न पूछते हैं।
अच्छा राखी बहन, ईर्ष्या हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अब देखो, कोई भी व्यक्ति हमारी ईर्ष्या करता है तो पहला तो वो आपको ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आप प्रगति की ओर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ईर्ष्या करके आपकी प्रगति को सर्टिफाई किया। अब आपको क्या करना चाहिए, आप उनको एप्रिशिएट करो, आप उनको रिस्पेक्ट दो। ऐसा सुना है, ईर्ष्या हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो मित्र को अप्रिशिएट किया जाता है और उनको अपने से आगे रखने की कोशिश करो। उनकी विशेषताओं को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो जरूर वो धीरे धीरे अपने समान बनने की कोशिश करेंगे, अपने को साथ देंगे, और उनकी जो एक हीनता की, इन्फीरियोरिटी की फीलिंग है वो निकल जाएगी। तो अगर कोई हमारी ईर्ष्या करते हैं तो हमें उनको सहयोग करना चाहिए।
तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही दीदी, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर लेना चाहता हूँ। ये जो आप बात कह रहे थे कि अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो ये बात आपकी बहुत अच्छी होती है, बट जब हमारे अंदर ही कभी कभार ईर्ष्या के संस्कार होते हैं, कभी कभार हम ही किसी से किसी के सक्सेस को देख के जेलस फील करते हैं, या फिर कोई सुंदर है, या किसी के पास कोई चीज है, कोई नया मकान खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, प्रमोशन मिलता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो फिर हम जेलस फील करने लगे, तो तब क्या करना चाहिए, हम अपने आप के ऊपर कैसे काम करें?
स्वयं में जब ईर्ष्या का भाव आता है तो वो एक हिडन मैसेज ये देते हैं कि हम वो काम करने के काबिल नहीं अपने को महसूस करते हैं, और दूसरों की प्रगति को हम देख भी नहीं सकते हैं। अब वास्तव में दूसरों की प्रगति को हमें अपना माइलस्टोन बना लेना चाहिए कि उन्होंने जीवन में ये प्रगति कैसे की, उनके एफर्ट कौन से रहे, उनके तरीके कौन से रहे। तो वास्तव में हमें मित्रता भाव से और सीखने के दृष्टिकोण से उनका साथ लेना चाहिए। ईर्ष्या ऐसी चीज है कि वो हमारी प्रगति को रोक देती है और हमारे अंदर हीनता का भाव आता है, और ऐसे होते होते फिर हम एकदम डाउन हो जाते हैं। इसलिए ये ईर्ष्या है या वहम है या शंका है, इन सब बातों से हमें अपने आप को, जैसे बीमारी से इंसान अपने को बचाता है, वैसे ये एक मानसिक बीमारियां हैं, उससे हमें अपने आप को सेफ करना चाहिए।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, ये चीज अगर हम समझ लें कि अगर हम ईर्ष्या करते हैं या फिर अगर हमारे अंदर ये ऐसी चीज आती है, तो भी इसे एक बीमारी के रूप में अगर हम देखने लगे, तो फिर हम इसके क्योर के बारे में, इसे ठीक करने के बारे में भी सोचेंगे। तो इसे नेचुरल नहीं समझ लेना है, अगर ऐसा कोई चीज ख्याल आपके मन में आता है तो उसे एक बीमारी के रूप में देखें और उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, तो आप इस चीज से ऊपर उठ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे दोस्त कुछ प्रश्न फेसबुक पर भी पूछते हैं और कुछ यूट्यूब पर भी पूछते हैं, दोनों में से मैं प्रश्न लेने की कोशिश कर रहा हूं। चंदू यादव पूछते हैं, दीदी मेरी बड़ी सिस्टर और जीजा जी वो मुझसे बात नहीं करते हैं, घर में कुछ इवेंट था तो उन्हें किसी बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मैंने ट्राई किया और थोड़ा गुस्सा भी किया था क्योंकि वो मुझे उन लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, बट आफ्टर दिस अब वो लोग मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से इनिशिएटिव कर रहा हूँ, बट दीदी कब तक हम ऐसा करते रहें, कब तक मुझे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, ऐसा चंदू जी का प्रश्न है ये।
चंदू भाई आपकी बात मैंने सुनी। अभी देखो ये मानव मन है ना, और इमोशंस हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और कोई ऐसी गलत बात अगर घर कर जाती है तो वो जल्दी घर से निकलती नहीं है। अभी ये आपके बहन या जीजा जी या जो भी रिलेटिव्स हैं, अब देखो आप फील भी कर रहे हैं कि हमें अपने वालों से अगर दूरी हो जाती है तो वो टॉलरेबल नहीं है, सहन नहीं होती है। तो आपने प्रयास तो किया है, एक प्रयास किया, दूसरा प्रयास किया, एक प्रयास और आप कर लीजिए, और वो प्रयास बहुत सच्ची दिल से ये करना कि आप एक सुंदर पत्र लिखो और उस पत्र के अंदर पूर्णतः सत्यता हो, जो प्रसंग बना है वो बनने का कारण क्या है, उसकी आपके दिल में क्या फीलिंग है, और सामने वाले को जो फीलिंग होगी उसके लिए आप उस पत्र में सॉरी लिखो कि ये मेरी सचमुच भूल हुई है, गलती हुई है, और मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। ऐसे करके सच्चाई से पत्र लिख करके पत्र आप उनके हाथ में पहुंचा दो, और फिर आप देखिए पत्र लिखने के पहले भी बहुत शुभ विचार करना, वो शुभ विचार पहले उनके पास पहुंचाओ और फिर वो शुभ विचारों को पत्र में लिख करके उनके तक पहुंचाओ। मैं आपको गारंटी से कहती हूं कि आपके उस पत्र का प्रभाव ऐसा काम करेगा कि वो आपके साथ बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, पर आप अपना दिल बिल्कुल निखालस रख के बिल्कुल सच्चाई से ये काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि सच्चाई पहुंचती है, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। ये जो साइंस है न मानवता का, ये बहुत सूक्ष्म होता है और उसके अंदर सच्चाई से ही सफलता मिलती है।
बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया दीदी कि ये सच्चाई के बारे में जो आपने बात कही। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न जो है वो एक हमारे युवा साथी पूछते हैं, नाम है इनका अभिषेक सिंह, और अभिषेक कहते हैं कि आई एम अ सीए स्टूडेंट एंड आई एम नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज। बहुत डिस्ट्रैक्शन में आई लूज माई सेल्फ और ज्यादा टाइम तक स्टडी नहीं कर पाता हूँ, प्लीज गिव सोल्यूशन, ऐसा ये पूछते हैं। और सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो नेचुरली ये चीजें कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न है, कनिका सोनी है, ये भी स्टूडेंट है, आई एम अ सीए स्टूडेंट, और वो कहते हैं कि मैं भी अभिषेक जो सिचुएशन में डील कर रहे हैं वैसा ही मेरे साथ हो रहा है, गाइड करें, ऐसा कनिका सोनी जी कहते हैं। कनिका और अभिषेक दोनों का सिमिलर प्रश्न है।
अभिषेक भाई और कनिता बहन, देखो आप लोगों ने लाइफ की कैरियर तो कितनी अच्छी पसंद की है, सीए बनने का कदम उठाया है और इतनी ऊंची पढ़ाई के लिए आप ये समझते भी हैं कि आपका फोकस होना जरूरी है, कंसंट्रेट होना जरूरी है, लेकिन आप वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उसका मूल कारण ये है कि आप अपने आप को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ रहे हो। आप अपने समय को साधारण रीति गंवा रहे हो। आप स्वयं को ये नहीं मानते कि ये समय खरीदा नहीं जाता है। देखो समय बहुत वैल्यूएबल है, समय खरीदा नहीं जाएगा, समय वापस नहीं आएगा, समय को लंबा नहीं किया जाता है। टाइम के लिए कहा, टाइम इज मोर देन मनी। तो आपको केवल इतनी अवेयरनेस आ जाए कि मुझे मेरा टाइम सफल करना है और मुझे मेरे टाइम को सफल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है, और टाइम मैनेजमेंट करते हुए अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई का फिक्स करना है, और फिक्स करते हुए अपने आप को एक प्रोग्राम देना है, और वो प्रोग्राम ये देना है, कल तक जो सोचा है ना मैं फोकस नहीं कर सकता हूं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, एकाग्रता नहीं रहती, वो सब विचारों को हटा दो और आप अपने आप को ये कमांड दो कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं और मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे सीए अच्छी तरह से पास करना है, और जबकि मैं सीए तक आया हूं, एंटर्ड हो गया हूं, यही मेरी सिद्धि है, तो सफलता तो मुझे मिलने वाली है। अपने को पॉजिटिव विचारों का प्रोग्राम दे दो और आप कर सकेंगे। वो जो ऑर्डिनरी सोच है उस सोच को ही खत्म कर दो। ये सोच मन में नहीं आने दो, मेरे से नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं बनता है, ये निकाल दो। ये आत्मविश्वास जगाओ कि मेरे से होगा, मेरे को करना है और मैं करके ही रहूंगा। तो ऐसा अपने को व्रत दे दो, जैसे कोई व्रत लेते हैं ने, अपने को व्रत दे दो और एक चीज, अपने को एक बहुत भाग्यवान आत्मा समझो। इसलिए कि लोगों को संसार में पढ़ने लिए पैसे नहीं है, कोई ऐसी सानुकूलता नहीं है। कुदरत ने आपको सीए में पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से अपने लाइफ में फुलफिल कीजिए। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ भावना है। मैं आपके लिए शुभ भावना करती हूँ कि आज से आपके जीवन में मुझे सीए अच्छी तरह से करना है और मुझे मेरे टाइम की एक एक सेकंड को सफल मैनेज करना है, ये विचार आपके दिल में प्रस्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, आप ये उनके अंदर ये फेथ रखते हैं, और कभी कभार जब सामने वाला हमारे अंदर फेथ रखता है तो हमें लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। इस मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, सुप्रीति कौर हैं, ये हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। सुप्रीति जी प्रश्न पूछते हैं, चिंतन पॉजिटिव करें। मेरे हस्बैंड की 1 जून को डेथ हुई और मेरी बेटी के ख्यालों से उसके पापा की याद नहीं जाती है। उसे देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ और मेरे मन में भी बहुत अजीब से ख्याल आते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे सुप्रीति जी प्रश्न पूछते हैं। इसमें वो अपने बारे में भी कहते हैं और अपने बेटी के बारे में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि उनके फादर की याद होने की वजह से उनकी बेटी भी परेशान होती है, तो बेटी परेशान होने से वो खुद भी बहुत सारे अजीब ख्याल उनके मन में आते हैं, तो इस चीज को कैसे डील करें, आप गाइड करें।
सुप्रीति बहन जी, आपकी बेटी की उम्र कितनी होंगी?
हम इंतजार करते हैं दीदी, मैं समझता हूँ वो कमेंट का जवाब देंगे, तब तक आप उनके बारे में बात करें। सुप्रीति जी क्या
बहन जी, आपने जो कहा कि आपके पति ने शरीर छोड़ दिया है और बेटी को अपने पिता की याद आती है, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि उनको याद आएगी। और बेटी का दुख दर्द आपका दुख दर्द बने, ये भी बहुत स्वाभाविक बात है क्योंकि ब्लड कनेक्शन तो खींचता ही है ना। अब आपको पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी बेटी के लिए पिता का रोल प्ले करना पड़ेगा। आप माँ तो हो लेकिन आपको पिता का रोल प्ले करना पड़ेगा। पिता ने बेटी को जो जो सुख दिया है, जैसे अंडरस्टैंड किया है, जो कंफर्ट्स दी है, वो सारी आप बहुत ही अटेंशन के साथ अपने बच्ची को देते जाओ। एक काम ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी बच्ची को पिता की याद भुलाने की कोशिश नहीं करो, आप उनको याद दिलाते जाओ कि देखो आपके पिताजी ऐसे थे ना, अभी आपको भी ऐसा बनना है, आपको अपने पिता का नाम रोशन करना है, आप एक ही हैं जो उनका नाम दुनिया में रोशन कर सकेगी, तो उनकी याद को पॉजिटिव एंगल दे दो। अब आप कहेंगे लेकिन मैं ही नहीं भूल सकती तो क्या करूं? अब ये वास्तविकता तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये आपके शरीर के साथ का संबंध था, जीवन साथी का, लेकिन हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा है। हम गाते भी हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो आप भगवान को तो मानती होंगी ना बहन, भगवान के साथ आप पति का नाता जोड़ दो और भगवान के साथ पति का नाता जोड़ के धीरे धीरे अपनी बच्ची की प्रीत भी भगवान के साथ जुड़ाओ, तो परमात्मा से आपको शक्ति मिलेगी और परमात्मा सही अर्थ में आपका जीवन साथी बन करके आपके जीवन के हर प्रसंग में साथ देता रहेगा। और ऐसा करने से आप अपनी बच्ची को भी संभाल सकेंगे और स्वयं को भी संभाल सकेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगला प्रश्न हमारे एक और दोस्त पूछते हैं, अभिषेक जी थैंक यू कहते हैं दीदी आपको कि बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब सब पार हो जाएगा, ऐसे वो कहते हैं, ओम शांति कहते हैं। थैंक यू अभिषेक। अगले प्रश्न पर मैं आगे बढ़ता हूँ। खुशबू खुशबू जी का प्रश्न है और खुशबू हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल शॉर्ट टेम्पर एंगर बट इन सम सिचुएशंस आई कैनॉट कंट्रोल, सो प्लीज गाइड मी। आफ्टर फ्यू टाइम्स आई ऑल्सो रियलाइज्ड आई डिड रॉन्ग थिंग्स एंड आई फेल्ट बैड, सो हाउ कैन आई कंट्रोल माई एंगर कंप्लीटली। खुशबू जी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि बहुत ही मैं शॉर्ट टेम्पर हूं और कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं, तो इसके लिए कृपया गाइड करें। और कुछ समय बाद मेरे को एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है और तब मैं बहुत बुरा महसूस करती हूं, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने एंगर को कि मैं कंप्लीटली कंट्रोल में ला सकूं इस चीज को।
खुशबू बेन, ये प्रॉब्लम तो आपका नहीं है, ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है। अगर आज किसी से भी पूछो कि आप क्रोध मुक्त हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ मैं क्रोध मुक्त हूं। तो क्रोध सभी को आता है। क्रोध आने के जो कारण हैं, वो कारण का निवारण करना पड़ेगा। सबसे पहला कारण ये है क्रोध आने का एक्सपेक्टेशन। हमारी सभी लोगों के प्रति बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग हमारी इच्छा के मुताबिक काम करें, लोग हमारी इच्छा के मुताबिक चले, और वो नहीं चलते हैं या नहीं करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो एक तो कारण है एक्सपेक्टेशन का। दूसरा कारण है स्वयं की स्वयं से डिजायर होती है कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, अच्छा पढ़ना है, आदि आदि कई डिजायर्स होती हैं। वो डिजायर पूरी नहीं होती है तब भी अपने को अपने पर भी गुस्सा आ जाता है। और तीसरा, जब कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती है तब भी आपको गुस्सा आ जाता है। अब ये गुस्सा कंट्रोल में हो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी एक मास्टर की मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि हम अपने आप को पहले तो शांत करना सीखें। देखो, मैं इस संस्था में आई उसके पहले मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था, और मेरा गुस्सा कोई छुड़ाए ऐसा मैं खोज में थी, और जो मेरा गुस्सा छुड़ाएगा उसको मैं अपनी जीवन दे दूंगी, ये मैंने निश्चित किया था। और योगानुयोग में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई और यहां आकर के पहले ही दिन मुझे ऐसा ज्ञान मिला कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा का स्वधर्म शांति है, और आत्मा शांति के सागर की संतान है। तो मेरे को सोच चला कि मैं आत्मा हूं और आत्मा तो शांत स्वरूप है, तो ये क्रोध कहां से आया। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी दिन मैं नोट पेन लेकर के बैठ गई और मैंने ये लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मुझे शांति बहुत प्रिय लगती है। मैं लिखती गई लिखती गई लिखती गई और मुझे आत्मा की अविनाशी शांति की अनुभूति हुई। मैंने उसी घड़ी संकल्प कर लिया कि अरे मेरा स्वधर्म शांति है, क्रोध तो है ही नहीं, अभी मैं जीवन भर क्रोध नहीं करूंगी। तो ऐसा नहीं कि उसी समय क्रोध कंट्रोल में आ गया, परंतु मैंने संकल्प किया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, इसलिए मैं हर समय ये किया करती थी, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं। तो उसका रूपांतरण दूसरे रूप में होता गया। आपको ये इसलिए सुनाती हूं कि आप ये प्रोसेस से पसार होंगे ना, धीरज रखना, आप क्रोध पर विजय पा सकेंगे। तो मैंने क्रोध करना तो बंद कर दिया। फिर मेरे को क्या होता था, रोना आता था, तो तो मैंने सोचा ये क्रोध का रूपांतर रोना हो गया। फिर मैं ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्रैक्टिस के द्वारा आत्मा के शांति का अभ्यास चालू रखा तो धीरे धीरे रोना बंद हो गया, परंतु लो बीपी हो गया। मुझे मालूम चला कि ये क्रोध छोड़ा तो ये हुआ, ये छोड़ने से ये हुआ। फिर मैं जितना समझने लगी और अपने आप को उस पीसफुल स्टेज में रखने लगी तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। और शांति मेरा स्वधर्म है तो ये शांति मेरे जीवन में अच्छी तरह से आ गई। आप ये पक्का कर लो कि आप एक आत्मा हो, आप शांत स्वरूप हो, आपका स्वधर्म शांति है और साइड बाय साइड मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं सकेगा। और दूसरा कि मैं जो संकल्प करूं, संकल्प करना है, मुझे उस संकल्प को पॉजिटिव एटीट्यूड से सफल होना है तो आपको बहुत सफलता मिलेगी।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। मैं समझता हूँ जो आप उत्तर दे रहे थे उससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल और आया था। ममता श्रीवास्तव जी क्रोध से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे थे और मैं समझता हूँ उनका प्रश्न था, आजकल मेरे नेचर में बहुत चिड़चिड़ा हो जा रहा है, इसके लिए गाइडेंस को पूछ रहे थे। मैं समझता हूँ ममता जी के प्रश्न का भी उत्तर आपने दे ही दिया कि क्रोध और जो चिड़चिड़ापन है उसे कैसे डील किया जाए। उसके साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं समझता हूँ वो भी इस बात को ले रहे होंगे। अगला प्रश्न यूट्यूब पर गुरमेहर पूछते हैं। गुरमेहर जी का प्रश्न है, वो कहते हैं, ओम शांति दीदी, मेरे हस्बैंड नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं और सुनने को तैयार ही नहीं होते, क्या करें, ये पूछते हैं।
अच्छा गुरु मेहर जी, अब ये सामने वाले का नेचर की बात है और उनको आपको फेस करना पड़ता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर तो है। लेकिन थोड़ा आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके पति जो कांस्टेंट बोलते रहते हैं वो बोलने का सब्जेक्ट क्या होता है, किस बारे में बोलते हैं, वो आपसे नाराज है और उस बारे में बोलते हैं, या कुछ कार्य करने का है और वो नहीं हो रहा है उस बारे में बोलते हैं, या उनको थोड़ा कोई मानसिक प्रॉब्लम है और बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बोलने के कारण का निराकरण होना चाहिए। अगर वो आपसे ही ऐसा करते हैं तो कुछ ऐसा रीजन होगा, अगला पिछला या वर्तमान, कि जो उनको इरिटेट करता होगा। तो आपको थोड़ा उसके लिए अपने आप को गहराई से देखना पड़ेगा कि कोई मैं ही तो रीजन नहीं हूं उनके ये नेचर के लिए। अगर समझो आप निर्दोष हैं, आप उनके लिए कोई रीजन नहीं है और फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको किसी के काउंसलिंग के जरिए उनको हैंडल करना चाहिए या कोई अपने स्नेही स्वजन के द्वारा उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की इंटेलिजेंट क्या है, इमोशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ये सब बातों को देख करके इसका जवाब दिया जा सकता है। बाकी आप अपनी एक कोशिश जरूर रखो कि उनके प्रति बहुत शुभ भावना रखो कि ये बहुत अच्छे हैं और ये अभी तो एकदम शांत हो गए हैं, अभी सब बातों को अच्छी तरह, ऐसा पॉजिटिव आप सोचो। भले आज के दिन इनमें ये चीज नहीं है, आप उनके लिए ऐसा सोचेंगे ना तो धीरे धीरे वो चीज उनके अंदर आती जाएगी, उसके बीज उनके अंदर पड़ते जाएंगे। पर आप धीरज रखना पड़ेगा, जैसे एक बीज डालने के बाद जब तक वो अंकुर बाहर निकले, वृक्ष उसका पौधा बने, फल फूल आए, हम कितनी धीरज रखते हैं। तो एक अच्छे विचार को बोने के बाद फिर उसके ऊपर अपने शुभ विचारों को बार बार करती रहे।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं ये जो बातें आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ, हमारे दोस्त उस चीज को समझ भी पा रहे हैं और उन सभी लोगों ने फीडबैक्स भी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं और वो फीडबैक्स हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू कहा है, कनिका सोनी जी थैंक यू कहते हैं, थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर वैल्यूएबल आंसर। हमारे कुछ दोस्तों ने भी थैंक यू कहा है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो भी क्रोध से डील कर रहे हैं और उसको आपके इस वक्तव्य को सुनकर बिना पूछे ही उनको जवाब मिल गया, ऐसे बीना वीरा जी कहते हैं। सभी लोगों के थैंक यू के मैसेजेस को मैं पढ़ता रहूंगा तो शायद इसके लिए बहुत टाइम निकल जाए, बट आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने आज प्रश्न पूछा, जिन्होंने फीडबैक्स दिए, जिन्होंने शाउट आउट दिया, हमें कमेंट्स लिखे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऑलमोस्ट 55 मिनट्स पे हैं, जैसा आप सभी जानते हैं हम हर दिन एक घंटे तक इस प्रोग्राम को लाइव करते हैं और आखिरी 5 मिनट हम मेडिटेशन के लिए रखते हैं ताकि हम सब लोगों ने जो चीजें सुनी है उन चीजों को हम अपने अंदर अब्सॉर्ब भी कर सके और मेडिटेशन से अपने आप को स्ट्रेंथन भी कर सके। तो आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं चंद्रिका दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दीदी जी आज हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़े और इतना अच्छा गाइडेंस हमें ऑफर किया। थैंक यू सो मच दीदी कि आज आप हमारे साथ आए और हमारे दोस्तों को हेल्प किया।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
दीदी मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगले 3-4 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएं। आप हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हैं तो हम आपके साथ भी ये मेडिटेशन करना चाहेंगे और हमारे दोस्त भी इस मौके का फायदा लेना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं तो आपके सानिध्य में मेडिटेशन का मौका उनको मिले।
बहुत अच्छा है, आप सभी एकदम रिलैक्स होकर के बैठे, जहां भी हो, और अपनी सारी चेतना को मस्तिष्क में भ्रुकुटी पर जहां तिलक करते हैं अपनी सारी चेतना को वहां महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। मैं एक दिव्य चेतना हूं, मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप शांत स्वरूप मैं शांति से सोचती हूँ, मैं शांति से बात करती हूँ, मैं शांति से सुनती हूँ, मैं शांति का व्यवहार करती हूँ, मुझे शांति बहुत प्रिय है, मेरे आसपास सर्वत्र शांति है, शांति है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का अवतार हूँ, परमात्मा से प्राप्त शांति मुझ आत्मा के द्वारा दूर दूर तक शांति के प्रकंपन फैला रहे हैं। मैं शुभ भावना करती हूँ विश्व की सर्व आत्माओं को खुशी शांति शक्ति प्राप्त हो। प्रकृति के पांचों तत्व को भी पावनता प्राप्त हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम।